نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. كتاب التوحيد میں سے ہم اگلے چپٹر کو دیکھیں گے. چپٹر کا نام ہے شرک کی تعریف اور اس کی قسمیں، پیج نمبر 150 ہے. تعریف و شرک کی و انواع اہو، مسئلہ نمبر 73 ہے. شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک اکبر اور دوسری شرک اصغر. اللہ تعالیٰ اپنی ذات، عبادات اور صفات میں اکیلا اور بے مثل ہے. کسی جاندار یا بے جان، زندہ یا فوت شدہ مخلوق کو اس کی ذات میں یا عبادت میں یا اس کی صفات میں شریک کرنا یا اس کے ہمسر سمجھنا شرک اکبر کہلاتا ہے، اور شرک اکبر کا مرتکب ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. ان ساری باتوں کی دلیل میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی. عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات یجعل للہ ندن ادخل النار، رواح البخاری. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں مرا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا، وہ آگ میں داخل کیا جائے گا. کتنی زبردست روایت ہے، اور انسان کو واقعی فکر لگ جاتی ہے، اپنی بھی اور اپنے پیاروں کی بھی، اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کے ساتھ انسان اٹھتا بیٹھتا ہے، کہ اگر ہم میں سے کوئی شرک کے اندر داخل ہو گیا تو اس کا جنت میں داخلہ منع ہے. آپ میرے ساتھ اس روایت کو پڑھیں گے عربی میں، اور اس کو آپ زبانی یاد کریں گے. آپ اپنی بکس میں نشان لگا سکتے ہیں. بہت چھوٹی سی حدیث ہے، ایک ایک لفظ کر کے میں آپ کے ساتھ پڑھتی ہوں، آپ میرے پیچھے دہرائیں گے. ان عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات یجعل للہ ندا ادخل النار، رواح البخاری. صرف حدیث کے لفظ بھی اگر یاد کر لیں گے نا، تو بہت آسانی سے یاد ہوگی کہ مم مات یجعل للہ ندن ادخل النار، کہ جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا تو وہ آگ میں داخل ہوگا. تو شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حق کسی اور کو دینا، جو چیز اللہ کے ذمہ ہو وہ کسی اور کے ذمہ لگا دینا. اور اس کی بہت سی قسمیں، انشاءاللہ یہ پورا ٹاپک جب کمپلیٹ ہوگا پھر اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہوگے تو انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے. اگلے مسئلے کو دیکھتے ہیں. شرک فی الذات، شرک فی العبادت، شرک فی الصفات کے علاوہ بعض ایسے دیگر امور جن کے لیے احادیث میں شرک کا لفظ استعمال ہوا ہے، مثلا ریا یا غیر اللہ کی قسم کھانا وغیرہ، شرک اصغر کہلاتا ہے. یعنی شرک صرف ایک ہی قسم کا نہیں ہوتا کہ کسی کے سامنے سجدہ ٹیک کرنا یا ماتھا ٹیک دینا، بلکہ شرک کی بہت سی قسمیں، اور انشاءاللہ اگلے پوری جو بھی ہمارے پیجز آئیں گے اور جو اگلا ٹاپک ہے اس میں ہم تفصیل سے اس کو دیکھیں گے. روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے، اللہ کے نبی نے فرمایا، تمہارے بارے میں مجھے جن چیزوں کا خوف ہے ان میں سب سے زیادہ ڈرنے والی چیز شرک اصغر ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے نبی، شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ریا. ریا کیا ہوتی ہے؟ دکھاوا، شو آف، کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرنا. مثلا آپ کوئی نماز پڑھ رہے تھے، اکیلے میں پڑھ رہے تھے تو بس ایسے ہی پڑھ رہے تھے، جو ہی احساس ہوا کہ کوئی دوسرا بھی دیکھ رہا ہے تو خوب لمبے لمبے سجدے کرنے لگے. اسی طرح مثلا چیریٹی، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں آپ، دوسروں کو دیں گے، لیکن دیتے وقت نیت کیا ہونی کہ اب جس کے سامنے دے رہی ہوں اس کو پتہ چلے گا اتنا چھوٹا نوٹ دے رہی ہوں، چلو پھر تھوڑا سا بڑا نوٹ لگا دیتی ہوں. یعنی کوئی بھی کام جو دکھاوے کے لیے کیا جائے، لوگوں کی واہ واہ کے لیے، وہ چیز جو ہے انسان کو جہنم کا ایندھن بناتی ہے. لیکن شرک اکبر اور شرک اصغر دونوں کا بہرحال فرق ہوگا. क्योंकि शिर्क अकबर का मुर्तकिब तो इस्लाम से ही निकल जाता है और हमेशा के लिए जहन्नुम में रहता है, जबकि शिर्क असगर का मुर्तकिब इस्लाम से खारिज नहीं होता लेकिन कबीरा गुनाह का मुर्तकिब होता है और इसकी सज़ा जहन्नुम है, जब तक अल्लाह ताला चाहेगा उसको वहाँ रखेगा। हाँ, अगर कोई शिर्क असगर से तौबा ना करे तो फिर वो शिर्क अकबर का बाइस बन जाता है। बड़ा शिर्क और छोटा शिर्क, छोटी चीज़ की आप अहमियत ना समझें ना तो वो बाद में बड़ी बनती है। आप अपने जिस्म में इसकी कई मिसालें देख सकते हैं। कोई बीमारी हो, शुरू में थोड़ी सी होती है, आप इग्नोर करते हैं, नहीं फील करते, लेकिन फिर एक वक्त आता है कि वो बीमारी बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन इसके बरक्स, जिस बीमारी को आप शुरू से ही पकड़ लेते हैं, फिर आप कई दफ़ा बड़ी चीज़ से बच जाते हैं। तो शिर्क का भी यही हाल है। या जैसे आप देखिए कि रूम में थोड़ी सी गंदगी फैलती है, आप फ़ौरन उठा लेते हैं तो रूम साफ़ रहता है, लेकिन अगर थोड़ी सी रहे फिर आप ना पकड़ें, फिर रहे फिर ना पकड़ें, नतीजा क्या होगा कि फिर आपका कमरा पूरे का पूरा गंदा हो जाएगा। तो शिर्क भी इसी तरह छोटे से बड़ा हो जाता है। अगला मसला है, शिर्क खफी से मुराद छुपा हुआ शिर्क है, जो इंसान के अंदर की छुपी हुई कैफियत का नाम है। शिर्क खफी शिर्क असगर भी हो सकता है, जैसा कि रियाकार का शिर्क, और शिर्क अकबर भी हो सकता है, जैसा कि मुनाफिक का शिर्क। इसकी दलील, अबू सईद रदी अल्लाहु अन्हो कहते हैं, रसूलुल्लाह हमारे पास तशरीफ़ लाए, हम लोग आपस में मसीह दज्जाल का जिक्र कर रहे थे। आपने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ की खबर ना दूँ जिसका मुझे तुम्हारे बारे में मसीह दज्जाल से भी ज़्यादा खौफ है। उन्होंने अर्ज़ किया, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी ज़रूर बताइए। आपने इरशाद फरमाया, वो है शिर्क खफी, यानी ये कि आदमी नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हो और जब उसे महसूस हो कि कोई देख रहा है तो अपनी नमाज लंबी कर दे। इसे इब्ने माजह ने रिवायत किया। तो लिहाजा एक शख्स ईमान के साथ जब किसी दूसरे को कोई काम इसलिए दिखाए कि उसकी वाह वाह हो, शोहरत हो, तो वो उसका शिर्क बन जाता है। लेकिन मुनाफिक का तो मामला ही उलट है ना, उसके तो दिल में इस्लाम है ही नहीं। बस आप देखिए कि दिल में ईमान है, इस्लाम है, इसके बावजूद अगर कोई शख्स गलत काम करता है तो ये शिर्क असगर है। वक्ती तौर पे उसके दिल में ख्याल आ गया था किसी की नज़रों में बड़ा बनने का, लेकिन मुनाफिक का तो मामला ही ख़राब है कि उसके तो दिल में ईमान है ही नहीं, तो लिहाजा उसका शिर्क फिर शिर्क अकबर बन जाता है। अब हम देखेंगे अगले चैप्टर में कि शिर्क को कुरान पाक की आयतों में किस तरह डिफ़ाइन किया गया, और फिर उससे अगले चैप्टर में देखेंगे कि अहादीस में कैसे इसको बयान किया गया। अश-शिर्कु फी दौइल कुरआन, यानी शिर्क कुरान मजीद की रोशनी में। शिर्क सबसे बड़ी जहालत है और शिर्क तमाम नेक आमाल को ज़ाया कर देता है, ख्वाह वो नबी ही क्यों ना हो। ये जो टॉपिक होते हैं ना, ये ऐसे लगता है कि जैसे दावा है, एक दावा किया जाता है और दावे के साथ हमेशा दलील होनी चाहिए। दलील क्या होगी, या कुरान की आयत या हदीस। इस चैप्टर में हम कुरान पाक की आयतों को देखेंगे। सूरत ज़ुमर की आयत नंबर 64 से 65 में है, कुल अफ़ग़ैरल्लाहि तामुरूनी आबुदु अय्युहल जाहिलून। ए नबी, इनसे कहो, फिर क्या है जाहिलो, तुम अल्लाह के सिवा किसी और की बंदगी करने के लिए मुझसे कहते हो। हालांकि तुम्हारी तरफ और तुमसे पहले गुजरे हुए तमाम अंबिया की तरफ ये वही भेजी जा चुकी है कि अगर तुमने शिर्क किया तो तुम्हारा अमल ज़ाया हो जाएगा और तुम खसारे में आओगे। देखिए कि अल्लाह के नबी को कहा जा रहा है कि जब लोग आपसे कोई ऐसा मुतालबा करें कि जिसकी वजह से शिर्क सरजद होने का अंदेशा हो, तो अब आगे से ये जवाब दो कि क्या मैं तुम्हारी बात मान के शिर्क कर लूँ, यानी मैं जाहिलों में से हो जाऊं। इससे पता चलता है कि अगर नबी भी शिर्क करेगा तो उसके भी अमल ज़ाया होंगे। अगला जो दावा है वो क्या है कि शिर्क इंसान को आसमान की बुलंदियों से ज़मीन की पस्ती में गिरा देता है, जहां वो मुसलसल मुख्तलिफ गुमराहियों में धंसता चला जाता है, हत्ता कि वो हलाक और बर्बाद हो जाता है। इसकी दलील सूरत हज की आयत नंबर 31 है, वमै युशरिक बिल्लाहि फकअन्नमा खर्र मिनस समा, और जिसने अल्लाह ताला के साथ शिर्क किया वो गोया आसमान से गिर पड़ा। अब या तो इसे परिंदे यानी शयातीन उचक कर ले जाएंगे, या ख्वाहिशाते नफ्स इसको ऐसी जगह ले जाकर फेंक देगी जहाँ इसके चीथड़े उड़ जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त मिसाल है ये शिर्क के समझने के लिए। आप देखिए कि हमारे यहाँ उर्दू में एक मुहावरा बोला जाता है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी वहाँ से तो बचा लेकिन नीचे आके फंस गया। यही हाल मुशरिक का है। एक रब के दर को छोड़ के जब इंसान दूसरे दरों पे झुकता है ना, तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि फिर उसके बाद इंसान एक दर पे भी मुतमईन नहीं रहता, फिर वहाँ से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, फिर उस इंसान को इस तरीके से हवाएं उचकती हैं, यानी ख्वाहिश नफ्स है ना। कभी आप लोगों को दे सुना करें कि जब एक दरगाह पे गए, कुछ काम नहीं बना, वहीं कोई मिल गया और उसने कहा नहीं मैं तो फलां के पास गई थी, वहां से फायदा हुआ था, चले वहां से चल पड़े। जैसे लोग दुनियावी डॉक्टर्स के पास जाते हैं ना अपने इलाज के लिए, तो वहाँ कहते हैं अच्छे इस डॉक्टर से फ़ायदा नहीं हुआ तो हम दूसरे डॉक्टर पे चलते हैं, उस पे नहीं गया तो उधर चलते हैं। इसी तरह फिर मुशरिक भी दर दर का भिखारी बन जाता है, शैतान उचकता है। शैतान को सबसे ज़्यादा खुशी उस वक्त होती है कि जब कोई बंदा कुफर और शिर्क का मुर्तकिब हो, क्योंकि उसको पता है कि अब इसके बाद इसके जन्नत में जाने के रास्ते बंद हो गए। तो लिहाजा कभी भी इंसान अपने आप को चेक करे, अपने आप को जब हम देखें तो देखें कि कहाँ मैं एक अल्लाह को छोड़ के किसी दूसरे के दर पे जाती हूँ। ये दर पे जाना सिर्फ कब्रों पे जाना नहीं होता, ये और कई मामलात में है। जब भी इंसान अपना नफ़ा या नुकसान किसी दूसरे से मंसूब कर देगा तो उसमें यही कैफियत होगी। फिर अगली बात, मुशरिक को तौहीद का जिक्र बड़ा नागवार गुजरता है। ये भी आपने देखा होगा कि जो लोग शिरकिया कामों में मुलव्वस होते हैं ना, उनको गुस्सा बड़ा आता है इस मौजू पे। आप जब भी उनसे इस मौजू को छेड़े वो कहते हैं देखा तुम तो पता नहीं हमें वहाबी बनाने लगे हो। अल्लाह के नबी के दौर में जब आपने लोगों को तौहीद सिखाई, बात हुई दीन की, तो लोगों ने कहा कि आप तो हमें साबी बना रहे हैं। तब साबी कहते थे, अब वहाबी कहते हैं। हालांकि ना कोई साबी बनता है ना वहाबी बनता है, वो तो अल्लाह को मानने वाला मुस्लिम बन जाता है। तो इसका तذکرہ कुरान पाक में भी आता है, सूरत जुमर की आयत 45 है, व इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल्लज़ीना ला यूमिनून। जब एक अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो आखिरत पर ईमान न रखने वालों के दिल कुढ़ने लगते हैं, और जब इसके सिवा दूसरों का जिक्र होता है तो यकायक खुशी से खिल उठते हैं। है ना बात, ये क्या बात है, ये सिर्फ एक ही को पुकारते हैं, क्या इनको किसी और की ज़रूरत नहीं। कहा और जूँ ही इनके बुज़ुर्गों का, इनकी ज़रा करामतों का जिक्र किया जाए तो खुशी खुशी उस काम के अंदर मुलव्वस होने लगते हैं। शिर्क के मामले में वालदैन या किसी आलिम या किसी मुर्शिद की इताअत करना हराम है। यानी आप देखिए कि ये इंसान के लिए बड़े काबिले इज्जत रिश्ते होते हैं ना, माँ बाप का रिश्ता, कोई आलिम, कोई उस्ताद, कोई ऐसा मामला जिससे इंसान को कोई फ़ायदा मिले, कोई रुश्द की बात मिले, लेकिन उनकी भी बात शिर्क वाली नहीं माननी। इसकी दलील सूरह अनकबूत की आयत नंबर 8 है, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ। हमने इंसान को हिदायत की है कि वो वालदैन के साथ नेक सलूक करे, लेकिन अगर वालदैन जोर डालें कि तू मेरे साथ किसी ऐसे माबूद को शरीक ठहराए जिसे शरीक की हैसियत से तू नहीं जानता, तो इनकी इताअत न कर, मेरी तरफ ही तुम सबको पलट कर आना है, फिर मैं तुमको बताऊंगा कि तुम क्या करते थे। आप सोच रहे होंगे कि क्या कभी माँ बाप भी शिर्क की दावत देते हैं? बिल्कुल देते हैं। ख़ास तौर पे तो ये आयतें तब उतरी थी कि जब सहाबा कराम में से जवान यंगस्टर जो थे वो मुसलमान होने लगे। साद बिन अबी वक्कास के साथ एक वाक़या पेश हुआ, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हुआ, मुस्सब बिन उमैर के साथ हुआ। इंशाल्लाह हम सीरा की क्लास में इसको देखेंगे कि जब ये नौजवान लोग अल्लाह के दीन की तरफ आते थे तो इनके घरों में क्या मसले उठते थे। ऐसे वक्तों में कहा कि बस अब तुमने माँ बाप की वो नहीं माननी कि जो वो तुम्हें अल्लाह के हुक्मों के ख़िलाफ़ दें। इसी से फिर दूसरी चीज़ें भी हैं, जब उनके कहने पर शिर्क नहीं करना तो फिर उनके कहने पर बाकी बेदीनी के काम भी नहीं करने, लेकिन करना क्या है कि उनके साथ मामला अच्छा रखना है। साहिब हुमा, दुनिया में उनके साथ मामला अच्छा रखो लेकिन गलत काम फिर भी नहीं करना। फिर अगली बात, मुशरिक मर्द या औरत का तौहीद परस्त औरत या मर्द से निकाह हराम है। इसकी दलील सूरत बकरा आयत 221 221, वला तनकिहुल मुशरिकाती हत्ता यू मिन्न वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिका। मुशरिक औरतों से निकाह हरगिज़ ना करो जब तक वो ईमान न ले आएं। एक मोमिन लौंडी मुशरिक आज़ाद औरत से बेहतर है, अगरचे वो मुशरिक औरत तुम्हें पसंद ही हो। और अपनी औरतों के निकाह मुशरिक मर्दों से भी हरगिज़ ना करो जब तक वो ईमान न ले आएं। एक ग़ुलाम आज़ाद मुशरिक से बेहतर है, ख़्वाह वो मुशरिक तुम्हें कितना ही पसंद हो। यहाँ कानून तो मिल गया, लेकिन ये पता नहीं चला कि क्यों वो मिलती है बात इसी से अगली आयत 222 में आता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह तुम्हें मग़फ़रत की तरह बुलाता है और ये लोग तुम्हें आग की तरह बुलाते हैं। इंसान के ऊपर उसकी सोहबत का बहुत असर होता है, और शोहर और बीवी से ज़्यादा कुर्ब का ताल्लुक़ किसी का नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अलमरु अला दीनी खलील ही, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। दोस्ती सबसे ज़्यादा शोहर और बीवी में है। अगर दोनों में से एक मुशरिक है और एक ईमान वाला है तो सोचिए कि क्या वो आपस में खुश रह सकते हैं। और हमेशा शैतान बुराई को खूबसूरत करके दिखाता है। ज़्यादा शुबा इस बात का हो जाता है कि फिर इंसान दूसरे की तरफ चल पड़े, बजाय इसके कि इस चीज़ पे हो कि चलो जिसके पास अच्छी चीज़ है वो दूसरे को माइल कर ले। इसलिए इस्लाम ने इस चीज़ को सख्ती से मना कर दिया कि कोई औरत किसी मुशरिक मर्द के साथ निकाह करे। मर्द किस औरत से कर सकता है कि जो अहले किताब के भी सही अकीदे पे है और उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, लेकिन मुशरिक औरत से मर्द भी निकाह नहीं कर सकता। और उसकी वजह यह है कि ये लोग आग की तरह बुलाते हैं। आज के दौर में इस मसले पे बहुत बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे पहले दौर में माँ बाप बच्चियों और बच्चों के रिश्तों में मजबूर होके शादियाँ कर देते थे, चलो लड़के जैसे भी होते थे, लेकिन आज उस जैसे ही होने में मज़हब का फ़र्क भी देखने में आने लगा कि क्या करें। अब बच्चियाँ कह रही हैं तो फिर ईसाई यहूदी या कुछ भी नहीं है तो उससे निकाह कर दिया जाए। और ये सब होता कब है कि जब अल्लाह की पहचान नहीं होती। जब हमारी औलादों को अल्लाह की पहचान होगी, अल्लाह से मोहब्बत होगी, तो ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह को ना मानने वाला और अल्लाह को मानने वाला एक घर में रहे। एक मौके पे एक हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हों ने ख्वाहिश की थी अबू जहल की बेटी से निकाह की, तो अल्लाह के नबी ने कहा था कि अल्लाह के दोस्त और अल्लाह के दुश्मन की बेटियां घर में नहीं रह सकती। अब देखिए कि ये साथ रहना एक ताल्लुक़ बनता है। आप अपने घरों में देखिए, देवरानी जेठानी होंगी, नंद भाभी होंगी, सारा दिन इंटरेक्शन होता है। हम एक दूसरे को देखते हैं, उनसे सीखते हैं, उनसे खाते हैं, हम उन जैसे कपड़े बनाते हैं, हम आपस में बातचीत करते हैं। तो दो मुख्तलिफ़ सोचों को मिलाना, उसका क्या नतीजा होगा? ये तो ऐसे ही होता है जैसे आग और पानी को मिलाएंगे तो धुआं निकलेगा। तो बहरहाल ये एक अलग मौजू है, लेकिन बहरहाल ऐसा निकाह जायज़ नहीं। अगला मसला, हालत शिर्क में फौत होने वाले मुशरिकों के लिए दुआए मगफरत करना मना है। दलील है सूरत तौबा की आयत 113, मा कान लिन नबी वल्लज़ीन आमनू अन यस्तगफिरू लिल मुशरिकीन। नबी को और इन लोगों को जो ईमान लाए ज़ेबा नहीं कि मुशरिकों के लिए मगफरत की दुआ करें, चाहे वो इनके रिश्तेदार ही क्यों ना हो, जबकि इन पर यह बात खुल चुकी कि वो जहन्नुम के मुस्तहिक हैं। और इसकी सबसे बड़ी दलील तो अल्लाह के नबी हैं कि आपका अपना चचा शिर्क की हालत में चले गए तो अल्लाह के नबी बावजूद सारी खैरख्वाही के उनके लिए दुआ नहीं कर सके। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र आएगा इसी के साथ ही, बल्कि आता है। तो लिहाजा मुशरिक के लिए ज़िंदगी में दुआ की जा सकती है। बस अगर कोई शिर्क करता है आपके साथ जॉब्स पे, स्कूलों में, कॉलेजों में, आप देखते हैं मुशरिकों को, दुआ कीजिए। और उनके लिए एक ही दुआ है कि अल्लाह इनको हिदायत दे दे, इनको माफ़ कर दे, इनको समझा दे, इनको समझ आ जाए। लेकिन जब किसी का खात्मा हो जाता है ना इस पे, अच्छा आप सब इधर क्यों देख रहे हैं, थोड़ी सी आपकी इस पे भी तरबियत कर दो। कुछ लोग मुसलसल इधर उधर देखते हैं, हालांकि कुछ सामने नहीं भी होता। हम लोगों की निगाहों को भी एक जगह ठहरने की आदत डलनी चाहिए। इंशाल्लाह ये सब हमारी तरबियत का हिस्सा है। हम हनीफ होना चाहते हैं ना, फोकस्ड। तो फोकस बंदा कब होता है? जब जिस्म और दिल और दिमाग के साथ पूरे का पूरे अपने मकसद के साथ फोकस हो। इस वक्त हमारा यह हक क्या है कि हमारी निगाहें किताब पे हों और हमारे हाथों में कलम और कागज़ हो, और हमारा दिमाग जहन सोच रहा हो, साथ साथ चले। अगर यहाँ बैठ के हम सोच भी कुछ और रहे हैं ना, तो हम खयानत कर रहे हैं। हमारी आंखें कहीं और जाती हैं तो भी खयानत करती हैं, और इससे एक एक के साथ फिर कई दूसरे लोगों का भी इसमें तवज्जो जो है वो बढ़ती है। अभी हम पढ़ भी शिर्क ही रहे हैं, ये आपकी क्लास के वक्त में थोड़ी सी शराकत हो जाती है जब आप इससे बाहर चले जाते हैं। मुशरिक पर जन्नत हराम है, वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में रहेगा। دلیل سورۃ مائدہ آیت 72، وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا، اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ دوسری دلیل سورۃ بیجینہ کی آیت 6 ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے، ایسے لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ کتنا زبردست انتقام ہے نا، ہمیشہ کی جہنم، ہمیشہ کی آگ۔ اللہ اکبر، اللہ کسی کو اس آگ کے قریب نہ کرے کہ جو اس دنیا کی آگ سے 69 ٹائمز زیادہ شدید ہے۔ یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، اور اسی کی شدت کو اگر انسان دیکھے چند لمحے کے لیے، اگر آپ سٹوو کے اوپر انگلی رکھ کے دیکھیں لمحہ، تو کیا ایک سیکنڈ کے بعد آپ وہاں ہاتھ نہیں رکھ سکیں گے، اور کیا ہوگا جب وہاں انسان اور پتھر جلیں گے۔ اللہ اکبر ہے۔